जो सत्य है वो सदा काल है, जो झूठा है आज है कल कल नहीं होगा। तो अब बताओ कि हमको स्वर्ग में किसने भेजा? शांति धाम तो हम अपनी इच्छा से गए, अपन को आत्मा समझा और शांति देवा को समझा और उसे याद किया, याद किया ना? तो जिसे कहा स्वरूप याद किया, किसी को याद करते हैं तो पहले उसके पांव याद आते हैं, टांगे याद आती हैं कि पेट याद आता है? हैं? क्या याद आता है? चेहरा याद आता है, क्योंकि भगवान बाप श्रेष्ठ इंद्रियों में प्रवेश करते हैं पहले कि पहले ही भ्रष्ट इंद्रियों में प्रवेश करके पाठ बजाते हैं? हैं? श्रेष्ठ इंद्रियों में प्रवेश करके पाठ बजाते हैं ब्रह्मा के रूप में। माँ की वृत्ति जो है वो श्रेष्ठ होती है या भ्रष्ट वृत्ति होती है? श्रेष्ठ वृत्ति होती है। तो देखो भगवान भी श्रेष्ठ इंद्रियों को आकर के धारण करते हैं पहले पहले। तो बताया कि सिर्फ श्रेष्ठ इंद्रियों को, जैसे महाकाली आती है तो गर्दन काटती है तो श्रेष्ठ इंद्रियां उड़ गई और बाकी के नीचे का हिस्सा गिर गया। तो महाकाली की तरह सिर्फ श्रेष्ठ इंद्रियों को स्वर्ग में ले जाएगा, खास तुम अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले बच्चों को श्रेष्ठ इंद्रियों को ही ले जाएगा, या श्रेष्ठ इंद्रिय और भ्रष्ट इंद्रियों को धारण करने वाले पूरे शरीर को ले जाएगा स्वर्ग में? हैं? पूरे शरीर को ले जाएगा। दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माओं के लिए ये बात लागू नहीं होती। तो उसके लिए तुम बच्चों को इसी शरीर में रहते मन बुद्धि से कहाँ का वासी बनना है? हैं? शांति देवा में बात करना है। और फिर वो शांति देवा बाप हमको सुखदाई दुनिया में भेजता है, माना हमारी मन बुद्धि में सदैव ऐसे श्रेष्ठ संकल्प चलते हैं कि हमें नई दुनिया का ही याद आती है, पुरानी दुनिया बिल्कुल भूल जाती है। तो हम मन बुद्धि रूपी आत्मा कहाँ के वासी हो गए? हैं? अरे परमधाम वासी तो हो ही गए थे पहले ही, फिर बाप ने हमको कहाँ भेज दिया? हैं? सुखधाम में भेज दिया। अभी भी कोई कोई बच्चे ये स्थिति को अनुभव करते होंगे, क्या कि जितना जितना हम ज्योति बिंदु आत्मा की याद में रहते हैं, जितना दूसरी आत्माओं को बिंदु आत्मा भाई भाई के रूप में देखने के अभ्यासी बनते हैं, माना अपनी मन बुद्धि रूपी आत्मा को हम सूक्ष्म रूप में देखने के आदि बनते हैं, दूसरों की आत्माओं को भी सूक्ष्म रूप में देखने के आदि अभ्यासी बन जाते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? हमारी बुद्ध रूपी आत्मा सूक्ष्म बनेगी या स्थूल बनेगी? सूक्ष्म बनती है। और सूक्ष्म बुद्धि रूपी आत्मा में ज्ञान के संकल्प ज्यादा चलेंगे और गहरी गहरे संकल्प चलेंगे कि कम संकल्प चलेंगे? ज्यादा संकल्प चलेंगे ज्ञान के और गहराई के ज्ञान के संकल्प चलेंगे। क्या हम ज्ञान सागर की गहराइयों में जाएंगे? और गहराई में जाने से सागर में क्या मिलता है? रत्न मिलते हैं। हम नए नए ज्ञान रतन खोज खोज करके दुनिया को बताएंगे। जैसे राम वाली आत्मा कहो, शंकर का पार्ट बजाने वाली आत्मा कहो, वो मंथन करके ज्ञान के नए नए पॉइंट, नए नए ज्ञान रतन धारण करती और सुनाती है या नहीं सुनाती है? सुनाती है। वैसे नंबरवार बच्चे जो हैं, वो उस ज्ञान में रमण करेंगे, जो ज्ञान की श्रेष्ठता ऐसी ऊंची होगी, ऐसी सात्विक होगी कि जिसमें भ्रष्ट संकल्प नहीं करेंगे, भ्रष्ट इंद्रियों को याद करने के संकल्प नहीं करेंगे। कौन से संकल्प करेंगे? नई दुनिया के दिव्य संकल्प करेंगे। तो हम कहां के वासी हो गए मन बुद्धि से? है स्वर्गवासी हो गए। माने इसी दुनिया में जो शांति धाम के वासी बनते हैं, शांति देवा को याद करते हैं और किसी को याद नहीं करते, तो शांति देवा हमको ऐसी मनन चिंतन मंथन की शक्ति देता है, क्या ऐसी ज्ञान की गहराइयां देता है कि हम अपनी आत्मा के अनेक जन्मों को जानने लगते हैं। पहले पहले जानते हैं कि नई दुनिया स्वर्ग में हमारा ऊंचे से ऊंचा जन्म क्या होगा। अव्वल नंबर पार्ट को पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे? पहचानते। तो हम कहां के वासी हो गए? मन बुद्धि से स्वर्गवासी हो गए। इसलिए बोला कि ये बात तुम्हारी अभी बुद्धि में आती ठीक है, लेकिन भविष्य में आएगी। अभी 1966 में ये बात बुद्धि में बिछाई नहीं है। बिठाई थी? नहीं बिठाई। और न तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा है। कब? 66 में। बाद की बात बताई क्या? जब शिव बाप त्रिनेत्री देवता में आते हैं, तब तुम बच्चों की बुद्धि में ये बात बिठाई जाती है और तुम्हारी बुद्धि में ये बात बैठ जाती है। क्या? कि पहले पहले तुम अपन को ज्योतिबिंदु आत्मा समझो और यही समझो कि हम पहले पहले अपने बाप के घर में रहते हैं। हैं? कहाँ रहते हैं? बाप के घर में। कौन से बाप के घर में? लौकिक बाप? नहीं, वो तो देह का संबंधी है। क्या? देह के संबंधियों से तो नष्टो मोआ स्मृति लब्धा होना है। आत्मा के बाप की बात है, लेकिन आत्मा का बाप सुप्रीम सोल शिव जब तक इस सृष्टि में साकार मनुष्य रथ में ना आवे, तब तक उसको कोई पहचान नहीं सकता। क्योंकि साकार में आकर के मुख से ज्ञान देगा, तभी तो आत्मा की पहचान होगी, कि पहले हो जाएगी। तो वो सुप्रीम सोल शिव आत्माओं का बाप जब इस सृष्टि पर साकार मनुष्य तन में आता है मुकर्रर रूप से, तब तुम्हारी बुद्धि में ये बात बैठती है। क्या? कि पहले हम कहां के वासी बनेंगे? हैं? शांति धाम के वासी बनेंगे। शांति धाम भी दो हो गए। कौन कौन से हैं? है एक शांति देवा का घर, जो सारी मनुष्य शक्ति का बाप है। कौन? प्रजापिता। जिस प्रजापिता के रथ में निरंतर शिव बाप प्रवेश करते हैं। कहते हैं तुम मुझे जितना याद करते हो क्या उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। तो याद किस रूप में करते हो? निराकार आत्मा के रूप में याद करते हो या चैतन्य आत्मा के रूप में याद करते हो? चैतन्य आत्मा तब कहें जब शरीर में हो। तो शरीर मुकर्रर रथ के साथ तुम जब मुझे आत्मा शिव को याद करते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम्हारे से दूर? दूर नहीं हूँ। और जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ वो शरीर रूपी घर मेरा घर हो गया। संगम युग में मेरा घर ऊपर या नीचे है? हाँ, इसलिए बोला मेरे को जो ऊपर अब याद करते हैं परम धाम में वो है शूद्र संप्रदाय। क्या वो क्या है? शूद्र संप्रदाय। और जो मैं आत्मा सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर साकार में आया हुआ हूँ उस साकार में याद करते हैं इस सृष्टि पर नीचे वो कौन से संप्रदाय हुए? हैं ब्राह्मण संप्रदाय। पक्के ब्राह्मण बनेंगे पुरुषार्थ करते करते तो ब्राह्मण सो देवता बन जाएंगे। तो पहले तुम घर में रहते शांति धाम में सृष्टि में जाते हो क्योंकि सृष्टि पर ही तुम बच्चे परम धाम को उतार लेते हो और बाद में शांति देवा क्या करते हैं तुमको सुखधाम में भेज देते हैं। सुख काय से मिलता है? है योग से सुख मिलता है या ज्ञान से सुख मिलता है? योग से सुख मिलता है। है योग से शक्ति आती है या सुख आता है? सुख भोगने की शक्ति आती है लेकिन ज्ञान से हम सुखदायी बनते हैं। ज्ञान होगा पक्का पक्का जिन आत्माओं में ज्ञान होगा बाप का तो वो सोलह कला संपूर्ण देवताएं बनेंगे पक्के सुखधाम के वासी। ज्ञानी नहीं होगा तो सत्युग में बाद में आएंगे दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी में बाद वाले नारायणों के राज्य में आएंगे या पहले पहले आएंगे बाद में नारायणों के राज्य में आएंगे? वो नारायण भी कम कला वाले क्योंकि कम ज्ञान धारण करते हैं उनके फॉलोअर्स भी कम ज्ञान धारण करते हैं इसलिए द्वापर युग से दूसरे धर्मों में क्यों कन्वर्ट हो गए? क्योंकि ज्ञान को पूरा धारण ही नहीं किया तो पूरा सुख भोगते हैं। है कि सतयुग में नंबर वार नीची कला का सुख भोगते हैं? है नीची कला का सुख भोगते हैं। तो देखो सुख कैसे मिलता है? ज्ञान से सुख मिलता है या योग से सुख मिलता है? जितना ज्ञान धारण करेंगे उतना सुख मिलेगा। गरीब आदमी है वो सुखी होता है जिसको रोटी नहीं मिलती कपड़े नहीं मिलते मकान नहीं मिलता गंदे नालों के किनारे प्लास्टिक की छोटी सी झोपड़ी डाल करके बाल बच्चों के साथ कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी जीता है वो सुखी रहता है गरीब आदमी या दुखी रहता है? और साहूकार है किस आधार पर? नहीं दुनिया भी धन है तो सुख भोगता है धन नहीं है तो दुख भोगता है। तुलसीदास ने भी कह दिया नहीं दरिद्र सम पातक पुंजा। क्या पातक माने पाप पुण्य माने भंडार पापों के भंडार के समान है दरिद्रता माने गरीबी। दुनिया का सबसे बड़ा दुख है क्या? गरीबी। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पास धन भी है, क्या बैंक बैलेंस भी बहुत है, तन भी स्वस्थ है, कोई बीमारी इतनी खास नहीं है और मन भी सोचने समझने योग्य है, फिर भी मेंटल टेंशन होता है या नहीं? तो देखो कितने दुखी होते हैं। वास्तव में वो उनका आर्टिफिशियल दुख है। क्या? उन्होंने अपनी आत्मा को नहीं पहचाना है। वो समझते हैं कि हम देह हैं, देहवान में रहते हैं। देहवान में रहने के कारण अज्ञानता आती है। अज्ञानता आने से दुखी होते हैं। तो बताया, ज्ञान से क्या मिलता है? है? ज्ञान से सुख मिलता है। दुनिया में कहते हैं धन है तो सुख मिलेगा, लक्ष्मी को बुलावेंगे काय के लिए? धन देने के। समझते हैं लक्ष्मी रुपया पैसा देती होगी। अब लक्ष्मी रुपया पैसा थोड़ी देती है, लक्ष्मी के द्वारा क्या मिलता है? ज्ञान धन मिलता है। और लक्ष्मी को कहाँ से मिलता है? नारायण से मिलता है। अरे लक्ष्मी नारायण से क्यों लेती है? है? क्यों लेती है जब खुद ही धन देने वाली है? है? नहीं, वो खुद धन देने वाली इसलिए बनती है कि उसमें जन्म जन्मांतर की प्यारिटी के संस्कार है। इसलिए बाबा ने बताया कन्याओं माताओं के द्वारा ये ज्ञान दिया जाना चाहिए। कन्याओं के मुख से ज्ञान देना, माताओं के मुख से ज्ञान देना अच्छा है। क्या? पुरुषों के मुख से ज्ञान देना शोभता नहीं है। क्यों नहीं शोभता है? हैं? क्योंकि पुरुष सब साथ दुर्योधन दुशासन, अकेले में बंद कमरे में सुंदर स्त्री और कन्या को पाकर के चंचलता किए बगैर नहीं रहते हैं, अपनी इंद्रियों पर उनको कंट्रोल नहीं रहता है। ये कंट्रोल शिव की शक्तियां कर सकती हैं, कन्याएं माताएं कर सकती हैं। इसलिए बोला तुम सात सीताएं हो। सीता माने शीतल, शीतल स्वभाव संस्कार वाली। क्या? गर्म होने वाली नहीं। तो शीतल स्वभाव संस्कार वाली कन्याओं माताओं को ज्ञान का कलश देते हैं। उनमें अव्वल नंबर कौन है? जगदम्बा या लक्ष्मी? जगदम्बा नहीं है, लक्ष्मी है। क्योंकि जो जगदम्बा नाम है वो काम के आधार पर है। किसकी अम्बा? जगत की अम्बा। जगत में कितने धर्म हैं? हैं? ढेरों धर्म हैं। वो धर्मावलंबी और धर्म पिताएं नीचे से नीचे कुल के हैं, नास्तिक भी हैं, जो न स्वर्ग को मानते, न आत्मा को मानते, न नरक को मानते, न परमात्मा को मानते। उनमें विचार ही विचार चलता है, कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी, न कोई अम्मा, न कोई बहन, न कोई बेटी। ऐसा राज्य उनमें चलता है तो वो नास्तिक राज्य कहलाता है। उन नास्तिकों की भी अम्बा कोई है या नहीं? कौन? जगदम्बा। तो माँ का स्वभाव होता है कैसा भी नीचे पे नीचे बच्चा हो, लुच्चा लफंगा चोर डकैत शराबी करब कबाबी उसको भी अपने से दूर रखना चाहती है या नजदीक रखना चाहेगी? हैं? नजदीक रखना चाहेगी। समझती मेरे से ज्यादा इसकी सुरक्षा कोई नहीं करेगा। तो ऐसे नीच आत्माओं का भी संग जो करेगा तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? इसलिए माताओं को बहुत संग का रंग लगता है और उनसे भी जाति कन्याओं को लगता है। इसलिए भारत में, खास भारत में, कुमारों की ज्यादा सुरक्षा होती है, अधर कुमारों की ज्यादा सुरक्षा होती है, बूढ़ों की ज्यादा सुरक्षा करते हैं, अधर कुमारियों की ज्यादा सुरक्षा करते हैं, या कुमारियों की ज्यादा सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है? कुमारियों की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देते। ऐसा ना हो कहीं कोई कुसंग में आ जाए तो ये गिर जाएगी, पतित बन जाएगी, इसका जीवन ही वैश्यालय बन जाएगा। इसलिए भारतीय कन्याओं की बहुत सुरक्षा करते हैं, विदेशों में नहीं करते। कहीं भी घूमती फिरती रहती है, अपना पति अपने आप जाकर के ढूंढने लग पड़ती है, माँ बाप पर विश्वास ही नहीं। तो देखो, भारत में भगवान आते हैं तो कन्याओं माताओं को ताज देते हैं। क्या जिम्मेवारी का ताज? कि स्वर्ग के गेट कन्याएं माताएं ही खोल सकती हैं, पुरुष नहीं खोल सकते। इसलिए पहले पहले लक्ष्मी को निमित्त बनाते। शास्त्रों में भी लिखा है, जब सागर मंथन हुआ तो किसने अमृत रस बांटा? लक्ष्मी ने बांटा। तो ये सारे कार्य अभी प्रैक्टिकल में चल रहे हैं, होने तो बताया कि तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, सुख की दुनिया के मालिक बनेंगे। उसका आधार क्या होगा? ज्ञान। और तुम सुख की दुनिया में जब जाएंगे तो लंबी उम्र होगी या छोटी आयु होगी? लंबी उम्र होगी। आज की कलयुगी दुनिया में भारतवासियों की आयु 30-35 वर्ष रह गई क्या? और सतयुग में भारतवासियों की एज 150 वर्ष थी। किस आधार पर है? आत्मिक स्थिति के आधार पर। परमात्मा बाप भी याद आता है, बाप की याद से लंबी आयु बनती है, और लंबी आयु बीमार धीमार की बनेगी, दुखी रोगी परेशान की बनेगी, या खुश रहने वाले की बनेगी, स्वस्थ रहने वाले की बनेगी? है, स्वस्थ रहने वाले की बनेगी। और स्वास्थ्य काहे से मिलता है? स्वास्थ्य का आधार क्या है? शरीर का जन्म जन्मांतर स्वास्थ्य अच्छा बना रहे उसका आधार क्या है? है? क्या? याद। याद से शक्ति आती है आत्मा में, ऐसी शक्ति आती है कि सतयुग में त्रेता में श्रेष्ठ इंद्रियों से बहुत 24 घंटे का सुख भोगते हैं। क्षणभंगुर आज की दुनिया की तरह नहीं। और कलयुग में क्या होता है? हैं? क्षणभंगुर सुख रह जाता है, वो भी श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख होता है या भ्रष्ट इंद्रियों का सुख होता है? भ्रष्ट इंद्रियों का सुख होता है, भ्रष्ट सुख होता है। तो बताया कि तुम अपन को आत्मा समझो, तुम्हारे पास सीढ़ी बनी हुई है कि हमने 84 जन्म लिए। अभी तुम पतित बने हो, आखिरी जन्म में। अभी पावन बनने के लिए क्या करना है? पवित्र बनने के लिए याद करना है, माने योग की पावर धारण करनी है। कैसी योग की पावर? सन्यासी जैसे बैठ जाते हैं घर बार छोड़ करके, काम धंधा छोड़ करके, ऐसी आदमी नहीं। बाप आते हैं तो प्रवृत्ति मार्ग में रह करके जीवन यापन करते हैं बच्चों के सामने, या निवृत्ति मार्ग में रहते हैं? हैं? हद की प्रवृत्ति में रहते हैं, थोड़े बाल बच्चों के साथ रहते हैं, या बेहद की प्रवृत्ति में रहते हैं? बेहद की प्रवृत्ति में रहते हैं। और बेहद की प्रवृत्ति में रहते हुए भी निखल्ले बैठे रहते हैं या कुछ काम धंधा करते हैं? हैं? सन्यासी तो निखल्ले हो जाते हैं, अपने पेट की रोटी भी नहीं बनाते, भीख मांग लेते हैं। तो तुम क्या करेंगे? तुम कैसी याद में रहेंगे? हैं? निखल्ले सन्यासियों की याद में रहेंगे या प्रवृत्ति बार के गृहस्थियों की याद में रहेंगे? हाँ, धंधादोरी भी करेंगे। क्या? धंधादोरी भी करेंगे। धंधादोरी किस लिए किया जाता है? हैं? किस लिए? सुख लेने और सुख देने के लिए तुम धंधादोरी करते हो, ताकि हम ज्यादा धन कमा लें और धन से खूब सुखी हो जाएं। ये हद का धंधा हुआ या बेहद का धंधा हुआ? ये हद के शरीर का धंधा हुआ। और बाप कौन सा धंधा सिखाते हैं? आत्मा का, बेहद का धंधा सिखाते हैं कि आत्मा इस शरीर रूपी घर में रहे और बल कर्म इंद्रियों से भी काम करे, चाहे ज्ञान इंद्रियों से काम करे, ज्ञान सुनाने का है, आत्मिक दृष्टि से दूसरों को देखे, आंखों से, श्रेष्ठ इंद्रियों से, और खुद भी आत्मिक स्थिति में रहे। तो देखो, आत्मिक स्थिति में रह करके भी तुम काम करते हो या नहीं करते हो? इंद्रियों से करते हैं। ऐसे ही भ्रष्ट इंद्रियों से भी अगर कोई काम करते हो, बाबा कहते हैं सुख लेना है और सुख देना है, तो इंद्रियों के द्वारा सुख लेंगे या बिना इंद्रियों के सुख और दुख लिया जाता है? है? इंद्रियों के द्वारा सुख लिया जाता है। तो जो भी जन्म जन्मांतर हम सुख लेते रहे हैं, वो सुख भ्रष्ट इंद्रियों के द्वारा भी लें अथवा दूसरों को दें, तो याद में रहें। क्या? कर्म इंद्रियों से कर्म करें, लेकिन कैसे योगी? कर्म योगी रहें। कर्म को अलग कर दें और याद को अलग कर दें, ऐसे नहीं। इसलिए बाप कहते हैं कि मैं अर्जुन जैसे गृहस्थियों को राजयोग सिखाता हूँ। क्या? किसको सिखाता हूँ? द्रोणाचार्य भीष्म पितामह जैसे राजयोग सीख ही नहीं पाते, बल गीता ज्ञान सुनते हैं परंतु गहराई तक धारण नहीं कर पाते। और तुम गृहस्थी बच्चे धारण भी करते हो और धारण कराते भी हो। कर्म इंद्रियों से प्रैक्टिकल कर्म करते हुए बाप को याद करने की प्रैक्टिस करते हो। तो देखो, ऐसी याद करने वाले तुम तुमको वरदान दिया है। क्या क्या कि अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर गृहस्थी जीवन में रहने वाले ले जाएंगे। पहले भी भगवान ने जब ब्रह्मा के द्वारा बेसिक ज्ञान दिया तो संक्षेत्र में क्या रिजल्ट निकला? जो बोला था क्षेत्र में नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी, लक्ष्मी नारायण का जन्म हो जाएगा। उस समय बेसिक में चलने वालों में क्या रिजल्ट निकला? गृहस्थी कन्याओं माताओं भाइयों ने वो ज्ञान लेना ज्यादा पसंद आया या सरेंडर हैंड्स को ज्यादा पसंद आया? है जो बाहर की दुनिया में घर गृहस्थ में रहते थे, धंधा दोरी में रहते थे, उन्होंने भगवान बाप को पहचान लिया। जो संक्षेत्र में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, पहचान लिया या नहीं पहचान लिया? इस सभा में नंबर वार उस बाप को पहचानने वाले बैठे हुए हैं या सन्यासी बैठे हुए हैं? है अर्जुन बैठे हुए जो गृहस्थी में रह करके सद्भाग्य का अर्जन करते हैं। तो देखो जो बात बेसिक के लिए लागू होती वही बात एडवांस में फिर लागू होगी। क्या? अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। क्या मतलब? जो सरेंडर्ड हुए हैं वो सब रह जाएंगे हैं? सब रह जाएंगे हैं? नहीं, चंद्रवंश से 5% और सूर्यवंश से भी 5% दोनों मिला करके 4.5 लाख आत्माएं ऐसी निकलेंगी जो घर गृहस्थ में रहते हुए एक बाप से इंद्रियों का संबंध जोड़ने वाली होंगी। सन्यासियों की तरह इंद्रियों का धंधा छोड़ने वाले नहीं होंगे।
छोड़ तो देते हैं
लेकिन मन बुद्धि कहाँ चली जाती है? है वही पुरानी बाल बच्चों की दुनिया को बार बार याद करती है कि नहीं करती है? ऐसे यहाँ भी होता है, बेसिक में भी ऐसे होता रहा, अभी भी हो रहा है और एडवांस में भी ऐसे होता है। ऐसे सरेंडर्ड वहाँ बहुत कम हैं जिन्होंने देखने में तो आता है दुनियादारी को छोड़ दिया लेकिन मन बुद्धि से, मन बुद्धि कहाँ डरी रहती है? है बाहर की दुनिया में रहती है या बाप ही उनका घर है? है बाप का घर ही उनका घर गृहस्थ है? है ज्यादातर कैसे हैं? बाप के साथ हैं, दूसरे धर्म के बीज नहीं है एडवांस में। और कितने परसेंट हैं? 90% दूसरे धर्मों के हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं और 10% सिर्फ है, उससे भी कम वो असल सूर्यवंशी हैं जो एक मात पिता की बुद्धि में रहती है। याद कंबाइंड रूप माँ बाप को याद करते हैं, याद भी उनकी प्रवृत्ति मार्ग की है, उनके लिए डायरेक्शन है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बाप की बात को ही मानना है, माता की बात को भी मानना है या नहीं मानना है? तो माता भी प्रैक्टिकल में बाप जरूर बनाते हैं। तो जो प्रैक्टिकल में माता होती है उसकी बात पर भी चलना चाहिए लेकिन ये बोल दिया कि ब्रह्मा कुमारी की भी जो मत मिले उसे भी जज करना है। क्या बाप के महावाक्यों से कि वो मत ब्रह्मा कुमारी की दी हुई राइट है या रंग है? अगर रंग मत है, बाप की मत के विपरीत मत है, तो कंफर्म जरूर करना है। क्या ऐसे नहीं कि जो बोला सो सत्य वचन महाराज, ठीक है कृपा निधान, सत्य है दया निधान, भक्तों की तरह चल पड़े? नहीं, बाप ने बोला है, बुद्धिमानों की बुद्धि बाप है, आत्माओं का बाप। तो बुद्धिमान बाप के जो बच्चे होंगे वो भी कैसे होंगे? बुद्धिमान बच्चे होंगे। बुद्धिमान बच्चों का काम है कि बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत हैं ऐसे बोल देते हैं बाबा ने हमको ये डायरेक्शन दिया, बाबा ने हमको बता दिया है कि तुम ऐसा करो वैसा करो कैसा करो। केवल उनके कहने मात्र से नहीं मानना है। क्या बोलो, हमें क्या मालूम तुम्हें बाप ने बता दिया कि नहीं बता दिया? हमें तो बाबा की वाणी हमारे सामने है, बाबा की वाणी तो ऐसे कहती है और तुम तो ऐसे कह रहे हो, ऐसा करने के लिए बोल रहे हो, फिर ये दो बातें कैसे हो सकती है? हमें एक मत पर चलना है कि दो मत पर चलना है? हमें दो राजा बनाने हैं या एक राजा बनाना है? एक राजा बनाना है ना, एक राज्य, एक धर्म, एक मत, एक कुल, एक भाषा होनी चाहिए। आपने ये दूसरी भाषा कहां से निकाल ली? बोलना चाहिए, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। नहीं तो भक्ति मार्ग के जो चेले होते हैं ना, चेलियां होती हैं, वो गुरुओं से बहुत डरती हैं। क्या ऐसी डरने वाली शिव शक्तियां होंगी क्या? हैं? उनको शिव शक्तियां कहेंगे या लिद्दड़ियां कहेंगे? वो तो रावण के सिर पर जो गधा होता है ना, उस गधे के साथ रहने वाली क्या होंगी? हैं? गधेड़ियां होंगी। अरे हमने तो लक्ष्य लिया है, क्या हम क्या बनेंगी? शिव की शक्तियां बनेंगी। तो देखो, बाप तो कितना गहरा गहरा समझाते हैं, समझाने वाला वो बाप एडवांस नॉलेज जिसे कहा जाता है, हायर सेकेंडरी स्कूल कॉलेज की जो हाईएस्ट पढ़ाई होती है वो पढ़ाई पढ़ाने वाला टीचर है, सुप्रीम टीचर। वो हमारा बाप भी है, हमारी आत्मा को जन्म देने वाला, आत्मा का परिचय देने वाला बाप भी है। और क्लेरिफिकेशन देने वाला टीचर भी है। काय का क्लेरिफिकेशन? गीता ज्ञान, जिसे मुरली भी कहा जाता है। क्या भगवान ने आके क्या सुनाई? भक्ति मार्ग में कहते हैं मुरली सुनाई। गोपियां पागल हो जाती थी, इतनी पागल हो जाती थी कि जब मुरली की तान सुनी और घर में अगर काजल लगा रही है एक आंख में तो दूसरी आंख में काजल लगाना भूल जाती और भाग खड़ी होती। देखो ऐसा पागलपन, दीवानी हो गई। तो बाप कहते हैं तुम तो गोपियां हो, मनसा के आधार पर, श्रेष्ठ संकल्पों के आधार पर बाप के साथ गुप्त संबंध जोड़ने वाली हो। गुप्त संबंध जोड़ने वालों को गोप और गोपी कहा जाता है। तो ऐसी गोप गोपियां जब तुम्हें बनी हुई है, बनना है, तो उसके लिए तुम्हारी बुद्धि में ये सीढ़ी का चित्र रहना चाहिए कि हम कैसे नीचे उतरते हैं, फिर कैसे ऊपर, कैसे नीचे उतरते हैं। अरे नीचे उतरने का कोई कारण होता होगा ना, क्या कारण है? क्यों सत्युगत रेखा में आत्मिक स्थिति नहीं रहती, वहाँ कम कलाएं नहीं होती, तो नीचे नहीं उतरे, तो क्यों कहते हो है? हाँ, सत्युग के आदि से ही जो सबसे आदि है ऊंचे ते ऊंचा आदि पुरुष कहा जाता है, जिसका नाम शिव के साथ ऊंचे ते ऊंचा करतार के साथ जोड़ा जाता है, उससे हम नीचे उतर आते हैं, उसके संग से नीचे उतरते हैं, औरों का संग पकड़ते हैं। कोई तो सतयुग की दूसरी पीढ़ी के नारायण को पकड़ लेते हैं, कोई तीसरे नारायण को, चौथी को, आठवें नारायण को पकड़ लेते हैं, उस पीढ़ी में जाके जन्म लेते हैं, फिर वो ही नारायण और उनके फॉलोअर्स द्वापर युग में दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखो गलती किसकी हुई, संग का रंग लेने से गलती हुई कि बिना संग के रंग के नीचे गिरते हैं, नीच आत्माओं का संग करते हैं तो नीचे गिरते हैं। और नीची किस्म की आत्माएं उन श्रेष्ठ आत्माओं के मुकाबले ढेर की ढेर तादाद में उतरती हैं नीचे, तो हुजूम के प्रभाव में हम आ जाते हैं। क्या भले गीता ज्ञान भी सुनते हैं, महाभारत कथा भी सुनते हैं कि भगवान पांच पांडवों के साथ रहता है, लेकिन बुद्धि में पांच पांडव आते हैं या हुजूम आ जाता है, है? जिधर हुजूम देखा वहां समझते यहाँ ज्यादा पावर है, ज्यादा ताकत है। ऐसे ही जन्म जन्मांतर होता आता है। संग के रंग से हम नीचे उतरते आए और यहाँ तक आते आते कलयुग के अंत में मनुष्य से क्या बन गए, हैं? दुखदाई क्या बन गए, हैं? अरे जो दुखी दुख देते हैं उनको क्या कहते हैं, राक्षस, राक्षस राक्षसी बन गए। फिर सीढ़ी में क्या दिखाया, ऊंचे कैसे चढ़ते हैं, हैं? सीढ़ी में दिखाया कि नहीं दिखाया, क्या दिखाया, कहाँ दिखाया, सीढ़ी में नीचे दिखाया कि ऊपर दिखाया कि दाईं ओर दिखाया कि बाईं ओर दिखाया? अरे सीढ़ी को देखा नहीं है, ये है ना सीढ़ी है, इस सीढ़ी में ऊपर से नीचे 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 उतरते आए। प्रजापिता जैसी आत्मा जो ऊंचे से ऊंचे पार्ट बजाने वाली साबित हो जाती है, भगवान बाप के साथ जिसका नाम जोड़ा जाता है वो पतितम कामी कांटा बन जाता है। कांटा क्या करता है, दुख देता है और धूल है सुख देता है। तो वो कामी कांटा जब पहली आत्मा मनुष्य सृष्टि की है वो ही नीचे गिर जाती है संग के रंग में आते आते, तो दूसरी आत्माओं का क्या हाल होगा, ऊंचे उठेंगी, तो कैसे ऊंचे उठती हैं, सीढ़ी में दिखाया है। अरे इसमें ऊंचा नहीं दिखाया, ऊंचे कैसे उठते हैं? तो कहाँ दिखाया, कहाँ दिखाया? दाई ओर, बाई ओर, नीचे, ऊपर, बीच में, कहाँ दिखाया? हैं? दाई ओर, सामने बैठो, तुम्हारा दाया हाथ किधर है? हाथ उठाओ, ये दाया हाथ, उधर उधर ऊंची उठती है, हैं? अरे किधर ऊंची उठती है, दाई ओर की बाई ओर? दाए हाथ की तरफ। अरे दाई हाथ, दाई ओर क्या दिखाया है? वो एक कहाँ है? वो दाई ओर वो एक कहाँ दिखाया? वो एक दिखाया कि नहीं दिखाया? जिसके संग के रंग से, जिसकी याद में रह करके, जिसकी इंद्रियों के संग के रंग में रह करके हमें संग का रंग लगता है और इतने पावरफुल बन जाते हैं जैसे महाकाली जगदम्बा पावरफुल बन जाती है, इतनी पावरफुल बन जाती है वो प्रकृति का रूप धारण करने वाली जगदम्बा जो सारी सृष्टि के विनाश का साकार निमित्त बनती है, उसको कहा जाता है असुर संहारिणी देवी। कौन सी है? हैं? महाकाली। वो महाकाली जो इस सृष्टि का रचयिता साकार में होता है उसकी छाती पर पांव रख के खड़ी हो जाती है, कितनी पावरफुल बन जाती है, हैं? बनती है कि नहीं? किस आधार पर पावरफुल बनी इतनी कि उसमें इतनी शक्ति आ गई? हैं? याद की शक्ति। हाँ वो कह रहे हैं संग के रंग की शक्ति नहीं तो याद की शक्ति। अरे रसगुल्ला खाया होगा तो याद आएगा कि जिसने खाया ही नहीं, देखा ही नहीं, सुना ही नहीं कानों से, उसको याद आएगा? किसको याद आएगा? जिसने खाया होगा उसको याद आएगा। तो किसका संग का रंग सबसे जास्ती? उस महाकाली रूपिणी जगदम्बा ने लिया है, जगत पिता का। वो कहाँ दिखाया गया है? वो दाई ओर कहाँ दिखाया गया? बाई ओर दिखाया। वो दाई ओर दिखाया, ये बाई ओर का हाथ में दिखाया, कहाँ दिखाया है? ये बाई ओर दिखाए, ये तीन चार कुमार हैं संग का रंग देने वाले, जिनमें तीन तो विधर्मियों के बीज हैं, जो त्रेता के अंत में जाकर के स्वर्ग को नष्ट करने वाली राजाइयों में राजा बनेंगे, जो राम की राजगद्दी में वो तीन भाई राम के दास दासी बने हुए दिखाए गए। कोई पंखा झल रहा है, कोई पांव धो रहा है, राजगद्दी का चित्र देखा कि नहीं? राम का नहीं देखा? कोई छत्र लिए खड़ा हुआ है, छत्र छाया, तो दास दासी हुए या राजा को कंट्रोल करने वाले हुए? दास दासी हुए। तो बताओ, ये कहते हैं ये जो बाई ओर ये चार कुमार जो खड़े हुए हैं वो सबसे ऊंचे हैं, उनका संग का रंग करना चाहिए। बताओ, वो संग का रंग देने वाला, वो ऊंचे से ऊंचे पार्टधारी, वो सारी सृष्टि का हीरो पार्टधारी, रंगमंच पर पार्ट बजाने वाला कौन है? दाई ओर है या बाई ओर है? दाई ओर कौन है, कहाँ है? है रामवाली आत्मा कांटों की सैया पर यहाँ नीचे लेती हुई है, जो खुद ही कांटों की सैया पर लेटा हुआ है, है? वो कांटों की सैया पर लेटने वाला हाय हाय करेगा, है? हाय ये कांटा चुभ गया, हाय ये कांटा चुभ गया, वो दुख से कराहेगा दुख भोगता है या सुख भोगता है, उसका संग का रंग लेने से हम ऊंचे उठते हैं। वाह भाई है भाई, चित्र में बताओ कौन है, चित्र में है ही नहीं, कौन है? चित्र में दिखाया तो है कि एक ही जन्म में ऊंचे जाते हैं, हैं? कहाँ है उसमें लक्ष्मी नारायण कहाँ दिखाए हैं? वो बीच में दिखाए, दाईं ओर दिखाए या बाईं ओर दिखाए? तो उसे ऊपर दिखाए, लक्ष्मी नारायण बीच में दिखाए या दाईं ओर दिखाए या बाईं ओर दिखाए? ऊपर जाने का रास्ता तो दाईं ओर दिखाया है कि एक ही जन्म में हम मन बुद्धि की याद से एकदम ऊपर परमधाम में जाते हैं। वो कौन है? कौन है शिव बाबा? वो चित्र कौन सा है? कहाँ है प्रजापिता ब्रह्मायण? है? वो उधर, वो जो ऊपर जा रहे हैं वो ब्रह्मा का चित्र दिखाया है। जहाँ ब्रह्मा का चित्र सरस्वती का और बच्चों का दिखाया है, वहाँ के लिए तो मुरली में बोला है कि सीढ़ी में तुम बच्चों को नीचे लिखना चाहिए क्या क्या? विनाशकाले विपरीत बुद्धि विनश्यंती हो गए, क्योंकि उन्होंने बाप को पहचाना ही नहीं। पहचाना? नहीं पहचाना। ब्रह्मा ने नहीं पहचाना, सरस्वती ने जिंदा रहते नहीं पहचाना, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने वालों ने भी नहीं पहचाना बाप को। तो जब बाप को पहचाना ही नहीं ऊंचे ऊंचे बाप को, तो संग कैसे करेंगे? तो जो चित्र दिखाया है एक ही जन्म में ऊंचे चले गए, वो ऊंचे ले जाने वाला जो निशानी दिखाई गई है, वहाँ कोई दिखाया है जिसका संग का रंग लेकर के जगदम्बा इतनी पावरफुल प्रकृति, प्रमाणे प्रकृष्ट, कृति माने रचना, भगवान की इतनी प्रकृष्ट पावरफुल रचना बन गई कि सारी सृष्टि का विनाश का प्रैक्टिकल निमित्त बनती है, असुर संहारिणी कही जाती है प्रकृति। वो संग के रंग से ऐसी बन गई। किसके संग के रंग से है? कहाँ है प्रजापिता वहां है? अरे झूठी बात बोलते। जिसका संग का रंग लगेगा वो प्रैक्टिकल में लगेगा या हवा में लगेगा? तो कहाँ है प्रैक्टिकल संग का रंग देने वाला है? वो दाई ओर है कि बाई ओर? बाई ओर है, कभी दाई ओर है, कभी बीच में है, कभी ऊपर है, कभी नीचे है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अमृत वेले चार चित्रों के सामने बैठ जाना चाहिए और मनन चिंतन मंथन करना चाहिए, नए नए पॉइंट निकलेंगे। मुरली में बहुत पहले से बोला हुआ है। तो जो बच्चे पहले पहले बाप के डायरेक्शन को ताजा ताजा खाएंगे, उनको उस फल से अच्छी अनुभूति होगी, या जो सड़ा गला के खाएंगे उनको अच्छी अनुभूति होगी? तो कोई आत्मा जरूर होगी, कोई तो होगी इतनी बड़ी सृष्टि में, जिसने अमृत वेले उन चार चित्रों के सामने बैठ करके सारी बातों पर मंथन किया होगा कि एक जन्म में उसके संग के रंग से उसकी याद से नीचे जाते हैं। वो दिखाया गया सीढ़ी में, तो वो कौन है? है? समझ में ही नहीं आती बाबा। अरे वो निराकार है या साकार है? तो कोई चित्र दिया हुआ है? है? नहीं दिया? अरे दुनिया में मंदिर भी बने हुए हैं उसके सबसे जास्ती है, शंकर के चित्र बने, शिव के चित्र बने हैं या शंकर के चित्र बने हैं? ये कहते हैं शंकर के चित्र बने हैं शिव के मंदिर में है, शिवलिंग बना है ना, तो जो लिंग है शिवलिंग जिसे शिव का लिंग कहा जाता है वो शिवलिंग बड़ा है, इतना बड़ा कहीं तो दुनिया में मंदिर में बहुत बड़ा बड़ा दिखाई दिया, यह बिंदु है वास्तव में, तो मंदिरों में वो बड़ा रूप दिखाया गया है या असली रूप दिखाया है, जो दुनिया का सबसे पुराना यादगार शिव का मंदिर है सोमनाथ मंदिर, वहाँ कैसा दिखाया गया था, बड़ा लाल का लाल पत्थर का लिंग और उसमें बिंदु बिंदु सूक्ष्म के रूप में हीरा जड़ा हुआ था, तो वो सूक्ष्म रूप है शिव का रूप जो उसमें प्रवेश है, और बड़ा रूप किसकी यादगार है, है? साकार की यादगार है, लेकिन उस साकार को हाथ पांव तो दिखाए ही नहीं, हाथ पांव दिखाए हैं, साकार को हाथ पांव होते हैं कि नहीं है, फिर दिखाए क्यों नहीं है? है? क्या मतलब उसके हाथ पांव कट के ऊपर उड़ जाते हैं है? है? कैसे है? हाथ पांव उड़ जाते हैं या रहते हैं? हाथ पांव रहते तो हैं, फिर यहाँ हाथ पांव दिखाए क्यों नहीं लिंग को है? शिव की शक्ति दिखाई, अरे संघ का रंग साकार का लगेगा या निराकार का लगेगा, तो कैसे लगेगा, यहाँ हाथ पांव दिखाए ही नहीं, नाक कान दिखाए ही नहीं, ज्ञान सुनाने वाला मुख तो दिखाया ही नहीं है, लिंग की यादगार है। अरे भाई लिंग रूप कामेंद्रिय वो तब बनता है जब प्रवेश करता है साकार में, कि बिना प्रवेश किए, तो प्रवेश करने वाली आत्मा कौन, तो शिवलिंग कहा जाता है या शंकर लिंग कहा जाता है, तो यहाँ लिंग जो रखा है बीच में देखा ऊपर नीचे याद उधर दाई ओर जहाँ ऊपर जा रहे हैं एक ही जन्म में, वो कौन रखा हुआ है, लिंग रखा हुआ है, वो साकार है या निराकार है, ज्योति बिंदु तो बीच में होता है, वो बिंदु तो बीच में है जो प्रवेश करता है, मेल तो है, है? अरे शिव जिसमें प्रवेश करता है वो साकार बड़ा रूप है, बोलेंगे ब्रह्मा बाबा है, वो कह रही ब्रह्मा बाबा है, अरे जो लिंग रखा हुआ है वो आत्मा की यादगार है जो शरीर को भूल जाता है, वो शंकर की आत्मा शरीर को और शरीर की ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों को भूल जाता है, तो कैसे दिखाएं, इंद्रियों के द्वारा दिखाएंगे तो भूला हुआ नहीं है, इंद्रियां हैं आत्मा को याद, अगर इंद्रियां नहीं दिखाएंगे लिंग को साकार को तो जैसे इंद्रियां है ही नहीं, आत्मा निराकारी बन गई, तो निराकारी जो आत्मा बन गई लेकिन है जन्म जन्मांतर की साकार, क्या जन्म जन्मांतर की साकार स्वभाव की है या शिव की तरह 5000 वर्ष निराकार बन के रहती है। अरे साकार बड़ा रूप धारण करके रहती है, जन जन्मांतर साकार रूप धारण करके रहती है, लेकिन यहाँ नहीं दिखाया है। क्या संगम युग में पुरुषार्थ की संपन्न स्टेज ऐसी बनती है कि इसको अपनी कर्मेंद्रियां और शरीर देह याद नहीं रहती, वो स्टेज दिखाई गई है कि ऐसी स्टेज वाले को अगर पहचान करके याद करेंगे तो तुम भी निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी आत्मा बन जाएंगे। तो ये बताया कि उस साकार बड़े में जिसको देह और देह की इंद्रियों देह के संबंधियों देह के पदार्थों की कोई याद है ही नहीं, उस बड़े रूप को भी अगर उसके संपन्न रूप को समझें बुद्धि में और उस रूप को याद करेंगे तो जिसको याद करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। बाकी निराकार शिव ज्योति बिंदु को याद करना और सदैव निराकारी स्टेज में रहना उसके लिए तो बता दिया, वो कठिन है सदा काल के लिए या सहज है? हैं? कठिन, इसलिए बताया सहज पुरुषार्थ कि न सिर्फ निराकार को याद करना है न सिर्फ साकार को याद करना है न आकारी भूत प्रेत को याद करना है। क्या करना है? साकार में निराकार को याद करने की प्रैक्टिस डालेंगे तो तुमको सहज हो जाएगा। और ये सहज याद दुनिया में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं सभी यही सहज पुरुषार्थ करती हैं। जो करती है वो इस साकारी सृष्टि में आकर साकार शरीर से सुख भोगती है, और जो नहीं करती है उस साकार को भगवान का स्वरूप साकार नहीं मानती है। गीता ज्ञान देने वाला गीता ज्ञान दाता गीतापति भगवान नहीं मानती है तो वो स्वर्ग के सुख नहीं भोग सकती। जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक ये निराकार को ही मानेंगे, साकार को नहीं मानते। इसलिए बताया कि तुम बच्चों को बाबा ने ये सीढ़ी दी हुई है, अमृत वेले कुछ भी बुद्धि ज्यादा इधर उधर होती है तो सीढ़ी के सामने बैठ जाओ। क्यों? दूसरे चित्रों के सामने क्यों नहीं इतना जोर दिया? इसलिए कि जो भारतवासी हैं वो 84 जन्मों की सीढ़ी नीचे उतरते हैं और 84 जन्मों की सीढ़ी ऊपर भी चढ़ते हैं। दूसरे धर्म के न 84 जन्म लेते हैं न 84 जन्मों की सीढ़ी ऊपर चढ़ते। इसलिए बताया कि अमृत वेले अगर अच्छी अवस्था न भी बनती है तो भी क्या करो, सीढ़ी के चित्र के सामने बैठ जाओ और एक एक बात पर मनन चिंतन मंथन करो कि ऐसा ये किस लिए दिखाया, तो क्या होगा, तुम भी पक्के भारतवासी देवता बन जावे। ओम। जिस मूर्ति को वो मुसलमान तोड़ करके गधे से सर तोड़ दिया और उस मूर्ति को ले जा करके अपने दरवाजे के सीढ़ियों पर डाल दिया है, यही भारत में तोड़ा और भारत में ही सुने अपना जहाँ घर बनाया अरे ले जाके डाला ना, तो सीढ़ी में चढ़ते समय भी पांव रखता था और दरवाजे से उतरते समय भी उस पर पांव रखता था। वो मूर्ति अलग से क्यों बनाई विक्रमादित्य ने? अगर लिंग को साकार रूप समझता था तो नहीं समझता था? आज तक किसी की बुद्धि में नहीं आया क्या कि जो शिवलिंग है वो साकार और निराकार का मेल है? ओम शांति।